نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير لا تحزن don't be sad غم نہ کرو day number 27 ہر دن کی طرح ہمارے پاس آج بھی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن پاک کی کہ جس میں غم کا تذکرہ ہے اور حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں پورا کا پورا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ انسانیت کے غموں کو دور کر سکے. آیت ہے سورۃ قصص آیت نمبر 7 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ, بس جب تمہیں اس بارے میں اندیشہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دیجئے اور اندیشہ نہ کریں اور نہ غم, ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو اپنے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. پیچھے بھی ہم نے بات کی کہ امیں موسیٰ ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دی گئیں, لیکن ایسی مائیں جو اپنے بچوں کی آزمائشوں پہ صبر کر لیں, اللہ تعالیٰ پھر ان کے بچوں کو بھی چنتا ہے اور ان ماؤں کو بھی ایک بہت ہی خوبصورت سی مثال بنا لیتا ہے. ہمارے لیے آج اس میں سے جو سیکھنے والا مقام ہے کہ اولاد کی طرف سے ملے ہوئے غموں پہ صبر کیجئے, تکلیفوں پہ صبر کیجئے. ایک بہت ہی عزیز ایڈمن بھی ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ان کے بارے میں مجھے آج پتہ چلا کہ چند دن پہلے ان کے ایک بچے کی ڈیتھ بھی ہوئی, کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی اور وہ اپنی ڈیوٹی پہ بھی رہیں, اور جب بات میں معلوم ہونے پہ ان سے کہا گیا کہ آپ تھوڑا ریسٹ کریں تو انہوں نے کہا نہیں, اب مجھے اور کام دیجئے کیونکہ اب تو میرا دل دنیا میں نہیں لگ رہا. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے وہ سوچ جس کو اللہ کے نبی کی دعا کہ انت جلی القرآن العظیم عربی یا قلبی و نور صدری سے انسان سمجھ سکتا. تو جتنا زیادہ اللہ کے وعدوں پہ یقین آتا ہے انسان, اولاد کی طرف سے یا بھائی بہنوں یا ماں باپ شوہر بیوی کسی کی طرف سے بھی غم آئے تو اللہ نہ کرے کسی کو اپنی اولاد کا صدمہ پہنچے, کوئی بیمار ہو, کوئی دنیا سے جائے, کوئی ماں سے جدا ہو, کوئی بچھڑے, کوئی گم جائے, کوئی اغوا ہو, لیکن اگر کبھی کسی کے اوپر ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو میں موسیٰ کو رول ماڈل سمجھتے ہوئے صبر کیجئے اور اللہ صبر کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پچھلی نشست میں جو ٹاپکس تھے اس میں تین باتیں سیکھیں, بہت ہی خوبصورت تھی, جس میں ایک یہ تھی کہ غضب نہ کرو, لا تغضب یعنی غصہ نہ کیجئے. پھر اسی طرح لوگوں مطمئن رہو, کس بات پر؟ کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی اور تمہیں تمہارے دکھوں تمہاری تکلیفوں کے بدلے ملیں گے. خیر کے کام برے نتائج سے بچاتے ہیں, کوئی بھی فائدہ نہ ہو خیر کا کام کرنے کا تو کوئی بات نہیں, برے نتیجے سے تو پھر آپ بچ ہی گئے. تفریح خاطر سے زندگانی کا سفر آسان ہو جاتا ہے, تو کبھی کبھی تفریح پہ جائیے. اسی طرح ملکوت کا مشاہدہ کیجئے, کیا ہوتا ہے اس سے, انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. ذہنی انتشار کا شکار نہ ہوں, کیونکہ بکھرے ہوئے ذہن کے ساتھ آپ سمٹے ہوئے کام نہیں کر سکیں گے. پھر ایمان و اخلاق سب سے گراں قدر ہے, یعنی آپ کی سب سے قیمتی متاع آپ کا ایمان اور آپ کا اخلاق ہے, اس کو کسی حال میں جانے نہ دیجئے. کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ اور یہ کتنے بد نصیب تھے. خوش نصیب وہ جنہوں نے اللہ کی اس دنیا میں آ کر اللہ کو پہچانا اور اس کی مرضی کے بن گئے اور اس کی عبد العباد کے بنائے ہوئے گھر جنت میں بسیرا کریں گے, اور اس سے اپوزٹ وہ بد نصیب ہیں. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. خواتین کا خیال رکھیں, نرم معاملہ کیا کریں, اس لیے کہ عورتیں فریجل ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ آپ گینے ہیں, ٹوٹ نہ جائیں. تو عورت جذباتی طور پہ ایموشنلی مرد سے ویک ہوتی ہے, تو مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے خاص طور پہ جذبات کا خیال رکھے. اسی طرح مسکراہٹ سے آغاز کیا جائے ہر بات کا, چاہے وہ اسپیچ ہے, وہ درس ہے, صبح کا وقت ہے, گھر میں آتے جاتے مہمان کو دیکھ کر سب سے پہلے بسم اللہ کی طرح مسکراہٹ रखिए सामने। और इसी तरह जज्बा इंतकाम गुस्सा करने वालों के लिए जहर है, यानी इंतकाम की आग में जलने वाला दूसरे को तो बाद में जलाता है, खुद पहले जलता है। आज हम नया टॉपिक लेंगे, अपनी शख्सियत ना खोने दीजिए, यानी बाज़ दफ़ा हम दूसरे के गुस्सा दिलाने पे अपने आप को खो देते हैं। इंसानपन तीन मरहले गुजरते हैं, तकलीद, इंतखाब और इख्तरा। तकलीद दूसरों की नकल करना, इनकी शख्सियत का रंग इख्तियार करना है, इनके सिफात व आदात को कबूल कर लेना है। इस तकलीद का सबब शदीद वाबस्तगी, अकीदत और ताल्लुक़ खातिर होता है, जो इंसान को हरकत व सकनात, आवाज़ और लहजे तक की नकल उतारने पर मजबूर कर देता है। ये जज्बा अपने आप को दफना देना है और अपनी ज़ात की मानवी खुदकुशी है। ऐसे लोग अपने को तकलीफ़ में डालते हैं, अपनी राय के खिलाफ जाते हैं और पीछे की तरफ चलते हैं। कोई अपनी फितरी आवाज़ दूसरे की वजह से छोड़ देता है, कोई अपनी चाल दूसरे की चाल पर कुर्बान कर देता है। काश के ये तकलीद अच्छी सिफात में होती, जिससे इसे बड़ाई और अफत मिलती, यानी इल्म, करम, बुर्दबारी वगैरह। लेकिन आपको हैरत होगी कि निकालची यानी नकल करने वाला हरूफ के मखारिज, तरीक़ाकार और हाथों के इशारे में भी नकल करते हैं। इसमें एक बात पर जोर है क्या, कि आप दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। आपको अपनी सिफात और सलाहियतों के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि शुरू से कोई दो आदमी भी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के हम शक्ल नहीं होते। अल्लाह ताला ने सूरत रूम में तो फरमा भी दिया, तुम्हारी ज़ुबानों और रंगों का इख्तलाफ भी निशानी है, यानी अल्लाह ताला के वजूद की निशानी है। फिर हम क्यों अपनी सिफात और सलाहियतों में दूसरों की तरह बनना चाहते हैं? आवाज़ का जमाल ये है कि आप मुनफरिद हों, और आपका हुस्ने कलाम ये है कि आप मुतमयिस हों, यानी प्रोमिनेंट हों, मुमताज़ हों। पहाड़ों में भी सुर्ख और सफ़ेद रंग हैं, इनके रंग मुख्तलिफ है, यानी सुर्ख भी अच्छा लगता है, सफ़ेद भी अच्छा लगता है। ज़रूरी तो नहीं ना कि सभी सुर्ख हो जाएं। बकौल शायर, तीन हैं, चार हैं और एक, ये सब इकट्ठी हो गई तो आठ हो गई, यानी सलीमी, सलमा, रुबाब, इसकी बहन, सादी, लुबना, अलजुमना, यालमुना और क़िताम वगैरह। मतलब क्या है इस सारी बात का जो हमने समझी, कि सिर्फ बग़ैर सोचे समझे अगले की तकलीद करना अपनी शख्सियत को खो देना है। अल्लाह ने आपको एक अलग शक्ल अकल दी, आपका और माइंड सेट है। जो दूसरे की नकल मारते हैं ना, वो असल में अपनी खूबियों से फ़ायदा नहीं उठा पाते और दूसरे की कार्बन कॉपी बनना चाहते हैं। तकलीद है तो सिर्फ नबी की। सूरत नजम आयत 2 से 4 में फरमाए, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयी युहा। यानी अगर आज आपको मुझे 100% किसी की तकलीद करनी है, किसी के नक्शे कदम पे चलना है, किसी को रोल मॉडल बनाना है, तो वो प्यारे नबी की ज़ात है। इंसानों में तो हमेशा ही कमियां रहीं। इसी तरह सूरत अलहज़ाब 21, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम लोगों के लिए अल्लाह ताला के रसूल में एक बेहतरीन नमूना था। इमाम मालिक की आदत क्या थी कि कब्र रसूल की तरफ इशारा करके कहते कि साहिबे कब्र के अलावा हर शख्स से इख्तलाफ किया जा सकता है। यानी बड़े से बड़ा इमाम, मुफ्ती, फकीह, शेख क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान है, आम इंसान है, और अल्लाह के नबियों का तो मुकाम बहुत आला होता है, उनसे तो इख्तलाफ का कोई सोच नहीं सकता। तो गोया के फिर कह लीजिए कि अल्लाह के नबी के अलावा किसी की तकलीद तकल्लुफ़ भी है और तरद्दुद भी है, इनफरादी शख्सियत का ख़ात्मा होता है। तो हमेशा मुख्तात होकर इन चीज़ों को लीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा झगड़ा है, कौन मुकल्लद कौन गैर मुकल्लद। चलिए, ये तो दीन की बात है ना। दुनिया में भी लोग मॉडल्स की तकलीद करते, फैशन डिज़ाइनर्स के नक्शे कदम पे चलते, अब लंबी कमीज़, अब छोटी कमीज़, ये क्या है? क्या कहीं ये भी आपकी अपनी सोच को पीछे करके दूसरे की सोच पे चलना तो नहीं? अच्छे खासे कपड़े थे, सब बेकार हो गए क्योंकि जी लंबी कमीज़ें आ गईं। अब लंबी आई तो छोटी को क्या करें, छोटी आई तो लंबी को क्या करें? तो इस तरीके से किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए कि आप अपनी अकल रकल, और आपको सजे ना सजे, आप सिर्फ इसलिए कुछ लिबास पहने के दूसरे पहनते हैं, तो ये भी अपनी शख्सियत को खोना है। इसी तरह अगला टॉपिक देखिए, साबरीन लुत्फ़ो करम के मुंतज़िर रहे, यानी जो सब्र करेगा ना उस पे ज़रूर अल्लाह का लुत्फ़ होगा, क्योंकि वो अल लतीफ़ है, और करम भी होगा क्योंकि वो अल करीम है। ये एक बुलंद पाया ख़तीब हैं, जब तकरीर करते तो अल्फाज परे बांध कर खड़े होते, यानी बहुत ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते, ज़ुबान पर सैलाब की तरह रवान दवा होते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़तीब हैं, जिनको अब ख़तीबुल इस्लाम हैं, और इनके शर्फ़ के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल के सामने दीन की नुसरत के लिए अपनी ख़तीबाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है इनका आपको पता है? साबित बिन कैस बिन शमास। अल्लाह ताला का फरमान नाजिल होता है, ईमान वालों, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद न करो, इनसे ज़ोर ज़ोर से ऐसे बात न करो जैसे एक दूसरे से करते हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल अनजाने में ज़ाया हो जाए। इस आयत का मिस्ताक साबित बिन कैस ने अपने आप को समझा और लोगों से छुपकर घर के गोशे में बैठ कर रोने लगे। रसूलुल्लाह ने पता करवाया तो आपके बारे में सहाबा ने इत्तला दी, आपने फरमाया हरगिज़ नहीं, साबित तो अहले जन्नत में से हैं। इस तरह इंतज़ार इनके हक़ में बशारत हो गया। इसी पे शायर कहते हैं, ऐसी खुशी मिली कि इसने पिछली तकलीफ़ को मिटा दिया, गमज़दा आदमी अभी घबराया था कि मुस्कुरा पड़ा। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन पर जब बुख्तान लगाया गया तो मुसलसल 1 माह रोती रहीं, गम के मारे कलेजा छलनी हो गया और तेज़ बुखार चढ़ाया, फिर उनकी बेगुनाही आ गई, यानी बरात, अल्लाह ने उनको बेगुनाह साबित कर दिया। तो फरमाया, वो लोग जो पाक दामन भोली भाली मोमिनात पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इन पर दुनिया और आखरत दोनों में लानत है। सूरत नूर आयत 23 है। हज़रत आयशा ने अल्लाह ताला की हम्द की कि पाकीज़ा थी और पाकीज़गी मिल गई, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, और पाकीज़गी मिल गई मोमिनीन को, इस फतेह मुबीन की बड़ी खुशी हुई। इसी तरह इन तीन का किस्सा जो गज़वे तबूक से पीछे रह गए, ज़मीन कुशादगी के बावजूद इन पर तंग हो गई थी, अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में क्या फरमाया, वदा कतलई हिमुलर दुबीमा रहुबत, इनके दिल तंग हो गए, उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से भागकर कहीं नहीं जा सकते, पनाह बस वही दे सकता है। फिर अल्लाह ने इनकी नुसरत की और तौबा कबूल फरमाई, जैसे कि कहा, न जहां में कहीं अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाने खराब को तेरे अफवाए बंदे नवाज में। यानी जब बंदा गुनाह करता है ना, तो उसके बाद अल्लाह ही का दर है जहां से फिर तौबा और तौबा के बाद गुनाहों की माफ़ी मिलती है। तो सब्र कीजिए, ये सब्र के दिन है, कभी कभी कुछ नहीं कर सकता इंसान सिवाय सब्र करने के, अल्लाह अजर ज़ाया नहीं करता। फिर आप देखिए कि कैसे अल्लाह ने नबियों का सब्र दिखाया, जैसे हज़रत यूसुफ़ और याकूब का सब्र, मिस्र और गिर्दोनवाह कहर से महफूज हो गए, आया ना सब्र काम। फिर इसी तरह आप देखिए, अल्लाह के नबी ने हुदैबिया में सब्र किया तो इन्ना फ़तहना लका फ़तह मुबीना की खुशखबरियाँ मिली। हज़रत अय्यूब के सब्र ने क्या रंग दिखाया कि माल और औलाद पहले से ज़्यादा मिल गए, और इब्राहिम की आजमाइशों पर तो अल्लाह ने खुद फरमाया, वज़िबतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन, कि इब्राहिम को जब भी आजमाया गया उन्होंने उस आजमाइश में ख़ुद को पूरी तरह कामयाब पाया। तो कुरान पाक में ये आयत आ गई, तफसील आ गई, आपकी तारीफ़ें हुई, पूरी उम्मत आपके नक्शे कदम पे चल रही है आज। हज़रत आयशा पे तोहमत लगी, सब्र किया, अल्लाह ने आयतें उतार दी, बेगुनाही साबित कर दी। तो हमारे यहाँ कहते हैं, सब्र का फल मीठा, जो फल पककर गिरे ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन अगर सब्र आधा हो भी तो खट्टा, बल्कि कड़वा भी होता है, तो कच्चा सब्र मीठा नहीं होगा। सब्र कीजिए तो पूरा कीजिए। अल्लाह अकबर, जिस पे पड़ती है उसको दिखती है, लेकिन अल्लाह नरम कर दे तो वो बात आसान भी होती है। क्या सीखा फिर अभी तक? कुछ चीज़ों में इंतकाम का जज्बा दबा दीजिए, बंदे को अंदर से अंदर ये जज्बा खोखला कर देता है। फिर इसी तरह बदला लेने की बजाय अपने नफ्स की इसलाह की फ़िक्र करनी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की अंधी तकलीद नहीं करनी, और मुश्किलात में सब्र अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम का बायस है। अल्लाह ताला हमें साबरीन में शामिल कर ले, और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले लोगों में अल्लाह ताला हमें शामिल फरमा ले। नेक्स्ट देखिएगा, जिस अमल में राहत मिले उसको लीजिए, वो करें, यानी राहत वाले काम किया करें। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मैं बीमार पड़ा طبیب نے مجھ سے کہا، آپ کے مطالعے اور علمی گفتگو سے بیماری میں اضافہ ہوگا۔ عموماً کہتے ہیں نا مریض کو آرام کریں، پڑھنے سے دماغ پہ بوجھ ہوگا، کوئی بک دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں پہ بوجھ ہوگا، تو ان کو بھی کچھ ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اس پر تو صبر نہیں ہو سکتا، میں تمہاری معلومات سے ہی محاکمہ کرتا ہوں، کیا ایسا نہیں کہ جب نفس مطمئن اور خوش ہو تو طبیعت میں تازگی اور قوت آتی ہے اور مرض ختم ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا، تو مجھے تو علم سے ہی سکون ملتا ہے، طبیعت میں اس سے قوت آئے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بولا، یہ ہمارے علاج سے باہر کی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اسے اپنے لیے شر نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ جی، حضرت عائشہ کو بھی کہا، آج ہمیں بھی کہا جاتا ہے، تو کیا پتہ چلا کہ آپ جب کسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں نا تو آپ اس میں نہیں تھکتے۔ لو یور جاب، جو کام کریں دل کی خوشی سے کریں، کھانا پکا رہے ہیں تو انجوائے کریں، اگر صفائی کر رہے ہیں تو انجوائے کیجئے، اور پڑھ پڑھا رہے ہیں تو انجوائے کیجئے، تو انشاءاللہ تھکن نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کام کر کے تھک گئے، آرام کر لیں، آپ کہتے ہیں نہیں، کام میں ہی آرام ہے، تو کام 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 اور اسی میں آرام۔ کیا پتہ چلا کہ جن کے دن رات علم کے میدان میں لگتے ہیں ان کو علم راحت ملتی ہے، ورنہ کوئی کیسے کرے؟ آپ خود سوچیں نا، مزہ نہ آ رہا ہو، صرف ثواب لینا ہے تو آپ تو پھر کوئی اور ثواب لیں، تسبیح پکڑ لیں، سبحان اللہ پڑھیں، جنت میں درخت لگتے رہیں، لیکن یہ خوشی ہوتی ہے جو علم کے میدان میں ملتی ہے، ایک ڈسکوری ہوتی ہے، نئی سے نئی چیز، آگے کیا ہے، کل کیا پڑھنا ہے، کل کیا پڑھانا ہے، جب آگے کیا کرنا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں الحمدللہ کہ بہت ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے علمی زندگی میں، رمضان سے پہلے اگر زاد الخیر سے لے کے آج تک کا دیکھیں، کتنے کورس شروع ہوئے، کتنے پورے ہوئے، اور اب ہم پھر نئے کورسز کے کنارے پہ ہیں۔ تو جب پلاننگس ہوں، جب ہو، تو میں بہت خوش ہوتی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کاروباری کا کوئی نیا اکاؤنٹ کھل جائے، کوئی نیا کلائنٹ ملے، تو ان کو تو مال کی خوشی ہوگی، اچھی بات ہے اگر حلال ہے، لیکن ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک نئی بک پڑھیں گے، ایک نئی چیز، ابھی ایک بک پوری کی، چلے شکر ہے پوری ہو رہی ہے، ہو جائے گی، کچھ کرتے ہیں، پھر ایک اور شروع ہوگی۔ اور ہر نئی چیز جو شروع ہوتی ہے، میں نے اکثر لوگوں سے یہی سنا ہے کہ یہ تو پہلے سے بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ ہم تھوڑے دن کے بعد ایک چیز کے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس طرح ٹیسٹ چینج کرتے ہوئے حالات اور ضرورت کے مطابق نئی سے نئی بکس پڑھنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں، جو عبادت میں ہوتے ہیں ان کو عبادت میں مزہ آتا ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، اور جو کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو بیماری میں فارغ رہنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تو لہٰذا غم ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، اس عمل میں مصروف ہوں جس میں دلی سکون ملتا ہے، تو آپ کو جس میں مزہ آتا ہے وہ کام کیجئے، اور جتنا زیادہ آپ کام کریں گے آپ کی توجہ بھی نہیں جائے گی اپنی بیماری کی طرف۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی چیز بھی بہت ہی پیاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم ان کو، ان کو، سب کو دیتے ہیں۔ یہ ان کو کون ہے؟ آجلا، جو دنیا میں چاہتے ہیں، جو جلدی مانگتے ہیں، اور اس کے برعکس ان کو بھی دیتے ہیں جو آخرہ کو مانگتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتا ہے، اللہ کے رستوں میں کھپ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں، آخرت بھی۔ مت سوچیے کہ صرف اللہ نے آخرت ہی دینی ہے، جس کو اللہ آخرت دینا چاہتے ہیں نا، پہلے اس کی دنیا کو خوبصورت کرتے ہیں۔ لکھ لیں، امام ابن تیمیہ کی طرف اس قول کی نسبت ہے کہ آخرت کی جنت میں جانے سے پہلے دنیا کی جنت سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جس کو سمجھ آ گئی وہ تو اس سے سرشار ہو گیا۔ تو اس دنیا کو جنت بنائیے، عبادات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ذریعے، اور اس کی خوشی کے ذریعے۔ آپ خود محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ آپ کی زندگی کا ایک نیا رخ کھل گیا، اور آپ اپنے آپ کو واقعی محسوس کریں گے کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ اس قسم کی چیزیں رکھ دی کہ جن کو آپ اپنے زندگی میں ایک بہت اہم جگہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم دے نہیں پاتے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ادھر اور ادھر سے مراد یہ بھی تو ہے نا کہ مومن کو دنیا کی کوئی نعمت چاہیے یا آخرت کی؟ ملے گی اللہ سے، اللہ اللہ اور اللہ، اللہ کی ہستی आपकी मेरी हर चीज़ की जिम्मेदार है। उसने आपकी दुनिया के भी काम कराने करने हैं और आखिरत के भी काम करने हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे दे बस कि हम उसकी दुनिया को बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर सकें। हमें सब्र इस्तकलाल से वक्त को नतीजा खेज बनाने और मुफीद काम करने और अमल सालेह में सबकत करने की सख्त ज़रूरत है। हमारी सआदत होगी जब हम दूसरों को नफ़ा पहुँचाएँ, शऊर पैदा करें, खिदमत करें और अपने रवैये से आला तहजीब और सकाफत पेश करें। हमारी वाकई खुश नसीबी होगी जब हम ज़िंदगी को यूं ही ना बता दें, हम बेकार पैदा नहीं हुए, हमारा वजूद अबस नहीं। एक किताब है अल ज़रकली की, अल आलाम, इसकी वरगर्दानी की, जिसमें मशरिक़ व मगरिब के हुक्मरान, सियासतदानों, उलमा, हुक्मा, उदबा और तबीबों के तस्करे हैं। इनमें कदरे मुश्तरक यह है कि ये सब नाबगे रोज़गार और मशहूर हैं, यानी बहुत फेमस लोग हैं। इनकी ज़िंदगियों की कहानी यानी सवाने उम्री पढ़ने से पता चला कि अल्लाह ने मखलूक में अपनी सुन्नत कायम रखी है और अपना वादा पूरा किया है कि जो दुनिया की वजह से कारनामे अंजाम दे, इसे दुनिया में पूरा फ़ायदा मिल जाता है, यानी शोहरत मिल जाती है, नामवरी होती है, मनसब और जाहो माल हासिल होता है, और जो आखिरत के लिए अच्छे अमाल अंजाम देता है, इसे यहाँ वहाँ दोनों का फ़ायदा मिलता है, दुनिया भी मिलती है और दुनियावी शोहरत और कबूलियत के साथ आखिरत का जरो सवाब भी मिलता है। और अल्लाह ने सच कहा कि तेरे रब की अता और बख्शिश इनको उनको सब को मिलती है और किसी को महरूम नहीं रखा जाता। तो इस बुक में कहते हैं कि बाज़ अबकरी, अबकरी क्या एक्स्ट्रा जीनियस यानी बहुत अक्लमंद शख्सियात के अहवाल भी है, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की तो खिदमत और कारहाए नुमाया अंजाम दिए लेकिन आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। इनमें गैर मोमिनीन ख़ास है। मैंने पाया कि उन्होंने दूसरों को तो खुश किया लेकिन अपने आप को खुशी ना दे सके। चुनाचे बास ने ख़ुदकुशी की, बास अपने हालात और ज़िंदगी से दिल गिरफ्ता हुए यानी उनके दिल टूटे। बास ने शिद्दत और तंगी की ज़िंदगी बसर की। मेरे दिल ने सवाल किया, मुझसे कुछ लोग फ़ायदा उठा लें, मैं महरूम रहूं, मैं खुश हूं, मैं बदहाल, तो क्या फ़र्क? यानी मुराद है कि मेरी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा मिल जाए, मैं फ़ायदा लूँ या ना लूँ। शायर कहते हैं कि बहुत सों को तुमने खुश कर दिया जबकि तुम मगमूम हो, बहुत सों को तो हंसाया जबकि खुद रोते रहे। अब देखिए, शम्मा खुद जलती है, कैंडल मोमबत्ती, लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। तो कभी कभी इंसानों को ऐसे भी होना पड़ता है। और ये देखते हैं कि अल्लाह ने इन बड़े लोगों में से हर एक को वो दे दिया जो उसने चाहा और अपना वादा पूरा कर दिया, लिहाजा इनमें से कुछ ने नोबल इनाम हासिल किया, किसी के लिए कदो काविश की। बास ने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की, किसी की तमन्ना थी। बास ने माल और जर यानी सोना पा लिया, किसी की लालच थी या इसी की तलब थी। इनमें से बाज़ अल्लाह के नेक बंदे भी थे जिन्होंने अल्लाह ताला के फ़जल से दुनिया और आखिरत का सवाब पा लिया क्योंकि इन्हें बस अल्लाह की खुशनूदी और रज़ा दरकार थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें उसकी रज़ा पाने वालों में बनाए, शोहरत और दिखावे और रिया के लिए काम करने वाला ना बनाए। बिल्कुल हक और सही बात है कि गुमनाम सआदतमंद और अपने मनहज और तरीके का पाबंद शख्स इस दौलतमंद मशहूर आदमी से ज़्यादा खुश होगा जो अपनी फ़िक्र और रसूल पर ना चलता हो। ये भी सच्ची बात है, जितनी शोहरत आती है ना उतनी इंसान की पर्सनल ज़िंदगी परेशान हो जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। ऐसे लोग बेचारे अक्सर ख्वाहिश करते हैं कि कहीं ऐसी जगह जाएं जहां लोग हमें ना जाने। दूर से ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं बंदे को, लेकिन अगर सिर्फ शोहरत ही हो तो क्या मिला? असल तो यह है कि इंसान को अच्छा काम करे, नेकियों में मिसाल बने, सदका जारिया हो, उसका जिक्र खैर हो, तो जिक्र खैर होना और चीज़ है, और सिर्फ शोहरत पर शोहरत ये अच्छी चीज़ नहीं है। जज़ीरतुल अरब का मुसलमान ऊंट चराने वाला इस्लाम के बायस टॉल्स्टॉय जैसे मशहूर व मारूफ अदीब से ज़्यादा खुश नसीब है क्योंकि पहले ने ज़िंदगी इत्मीनान और सुकून से गुजारी, इसे अपने अंजाम की फ़िक्र थी, दूसरे की ज़िंदगी टुकड़ों में बटी थी, तितर बितर थी, मकसद मिलता ना था और मुस्तकबिल मालूम ना था। यानी एक तरफ एक मुसलमान राइटर है और जिसको इतना कुछ मिला, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो दुनिया में बहुत भी कामयाब हुआ लेकिन इंजाम अच्छा नहीं हुआ। सोचिए ज़रा। हम अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सोचें कि जिसको याद करके हम भी ये कह सकें कि अल्लाह ने जो चीज़ किफ़ायत के साथ दी वही फ़ायदा मंद थी। और जब इंजाम अच्छा होता है ना तो बीच के रास्ते वैसे ही भूल जाते हैं, और इंजाम अच्छा ना हो ना तो बीच की खैर की चीज़ें भी बेकार होने लगती हैं। जी, इंसानियत ने सबसे बड़ी दवा और सबसे अहम इलाज जो दरियाफ्त किया है वो मुसलमान के पास है, और वो क्या है आपको इस बुक से क्या लगा? एक बुनियादी चीज़ है जो बंदे की खुशी के लिए बहुत अहम है, और वो है कज़ा और कदर पर ईमान रखना। अगर आप अपने नसीब से राज़ी हैं ना तो आधे से ज़्यादा तो मसले उधर ही हल हो गए, क्योंकि जो कुछ हमें मिलता है वो नसीब के ही रास्ते आता है ना, तो लिहाजा उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। बस हुक्मा कहते हैं जो कज़ा और कदर को ना माने वो ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकता। इस बात को आपके सामने कई तरह से पेश किया जा चुका है, ऐसा इरादतन किया गया क्योंकि मुझे यकीन है, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है और दूसरों का भी, कि जहाँ खुशी की बात होगी वहाँ कज़ा और कदर पर ईमान की बात करेंगे, जहाँ कोई नापसंदीदा बात होती है तो वहाँ कज़ा और कदर का ख्याल कम ही आता है। इसलिए ईमानियात में कज़ा और कदर को मानना भी एक ज़रूरी शर्त करार पाई। फरमाया कि तुम अच्छी बुरी और कड़वी मीठी हर तरह की तकदीर पर ईमान लाओगे तो फिर सबसे बड़ी खूबी खुश रहने में क्या मिली? राजी व रज़ा। अल्लाह आपको इधर भी देगा उधर भी देगा, मांगेंगे तो भी देगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। तो क्या देखा, ज़रा सा दोहराइए कि दुनिया चाहने वाले को सिर्फ दुनिया मिलती है, यानी ये दुनिया की शोहरत है, आखिरत चाहने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों के फ़ायदे मिलते हैं, और जो ये कहता है कि रब हमें दुनिया में ही दे इसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, आयत 200, यानी रब्बना आतिना फिद दुनिया, उसको तो हंसना भी नहीं चाहिए। वो कहता है हलाल से मिले या हराम से, हमें हर तरह की दुनिया चाहिए। अदी बिन हातिम से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाप हातिम थे, सिला रहमी करते थे और कई नेक काम करते थे। आपने फरमाया, बेशक तुम्हारे वालिद ने जिस काम का इरादा किया था उसने उसको पा लिया, मुराद शोहरत और नमूद नमाइश थी। अब आप देखिए, बचपन से हम लोग सुनते आए हातिम था ये किरदार है, लेकिन कुरान पढ़ा तो पता चला कि वो तो दुनिया की सिर्फ तमन्ना थी और चली गई। तो फिर क्या सीखा हमने कि अपने आप को हमेशा अल्लाह की नज़रों में रखने के लिए कोई काम करना है, ना कि अपनी नज़रों में बड़ा बनने के लिए। किसी भी इंसान की जो अच्छी आदत है, अगर आपको इस्लाम के मुताबिक वो अच्छी लगती है तो आप ले लीजिए, बस उसके बारे में बहुत कुछ ना सोचिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो अधूरी ही अच्छी रहेंगी। जैसा भी आप उसको रखेंगे, आपके मतलब और आपके मिजाज की चीज़ मिल गई तो बस वही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक, अल्लाह ईमान वालों की रहनुमाई करता है, और ये इतनी बड़ी नेमत है, ईमान के तोहफे को आप कह लें कि इसमें समेट लीजिए, कि हकीकत है कि ईमान के बदले में अल्लाह की तरफ से रहनुमाई हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग मिसगाइडेड हैं। और जिसको अल्लाह रास्ता दिखाए, जैसे नेविगेटर होता है ना, वो रास्ता दिखाता है आपको, आप कह लीजिए कि ईमान एक नेविगेटर है। ईमान एक ऐसा खूबसूरत नेविगेटर है कि जो खैर के रास्ते दिखाता है, और उन पे चलने के बाद इंसान वाकई अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों से कामयाब पाता है। कज़ा व कदर पर ईमान वाला कैसे खुश रहता है, और ईमान न रखने वाला किस तरह शकूक व शुबहात का शिकार होता है, ये किस्से से वाज़े होगा। एक मशहूर अमेरिकन मुसन्निफ बोदली है जिसने सहरा की आंधी और दी प्रॉफिट वगैरह किताबें लिखी हैं, ये किताबों के नाम है। 1918 में इसने मगरबी शिमाली अफ्रीका को वतन बना लिया, जहाँ मुसलमान बादिया नशीनों के साथ रहना सहना था, यानी जंगलों में देहातों में रहने वाले लोग। ये लोग नमाज रोज़ा और जिक्र अस्कार के पाबंद थे, इनके साथ गुजारे बाज़ मुशाहदे उसने लिखे हैं, यानी अब खुद नॉन मुस्लिम है लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बामल मुस्लिमों के बीच में रहता है। तो कुछ चीज़ें जो उसने ऑब्ज़र्व की उसमें से एक चीज़ क्या थी, एक दिन तेज़ आंधी आई जिसने सहरा की रेत उठाकर बहरे अबयत मुतवसत पार करके फ्रांस की वादी और रवा में जा डाला। आंधी नहायत शदीद गर्म थी, गर्मी की शिद्दत से मुझे लगा कि मेरे सर के बाल उखड़ जाएंगे और इस शिद्दत से मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन अरबों को कोई परवाह ही ना हुई। उन्होंने कंधे उचकाए और कहा, ये मुकद्दर की बात है। फिर अपने काम में लग गए। कबीले का सरदार शेख बोला, हमारी हर चीज़ बर्बाद हो सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब भी हमारे मवेशियों यानी कैटल्स और एनिमल्स, इनमें 40% बाकी हैं और हम इनसे दोबारा काम की शुरुआत कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए ये है, बंदा ये नहीं देखता क्या गया, वो कहता है क्या बच गया। चार बच्चों में एक चला गया, वो ये नहीं कहता, वो कहता है अभी तीन बाकी हैं। ये चीज़ आपके हर डिप्रेशन और हर गम को दूर करेगी। एक हादसा और है। और एक दिन कहते हैं कि एक दिन हम सहरा में कार से जा रहे थे, एक पहिया ख़राब हो गया, ड्राइवर एहतियाती पहिया रखना भूल गया था। अब मुझे गुस्सा भी आया और फिक्र भी लाहक हुई। कबायलियों ने कहा, गुस्से का कोई फ़ायदा ना होगा कि तैश में आकर इंसान हमकते कर बैठता है। इसके बाद गाड़ी तीन ही पहियों पर चली। थोड़ा सा ही चले थे कि मालूम हुआ तेल भी ख़त्म हो गया है, यानी पेट्रोल भी नहीं था। अब भी अरबी साथी नहीं भड़के, बल्कि पुरसकून रहे और रास्ता पैदल चलकर तय किया। रास्ता भर नगमे गुनगुनाते रहे। अरबियों के साथ सहरा में 7 साल जो गुजरे, इनसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अमेरिका और यूरोप में इस्तराब से दो चार नफसियाती बीमारियों के मरीज़ और नशाबाज जो मनशियात यानी ड्रग्स पर पैसे खर्च करते हैं, वो मौजूदा तमद्दुन का शिकार हैं, जिसकी असास भाग दौड़ और सूरत पर है। यानी जल्दी जल्दी सब मिल जाए, ये नहीं क्यों नहीं, जल्दी ऑर्डर करो, जल्दी मंगाओ वगैरह। सहरा में रहते हुए मुझे कोई बेचैनी नहीं हुई। वो अल्लाह की जन्नत है, वहाँ सकीनत, रज़ा और कनात है। अगरचे बहुत से लोग अरबियों के अकीदे जबर व कदर का मजाक उड़ाते हैं, यानी जबर कौन होता है, जो कहते हैं हम जबरी हैं, सब कुछ तकदीर है, और जो दूसरी तरफ है इकदार, वो कहते हैं सब कुछ तदबीर है। यानी ये दो बातिल अकीदे गुजरे कि एक कहते थे हम मजबूरे कुल हैं और एक कहते थे सब कुछ हमारे इख्तियार में है। लेकिन कौन जानता है कि ये अरबी ही हकीकत को पा गए हों, क्योंकि जब मैं ज़िंदगी की यादें हाफ़िज़े में ताज़ा करता हूँ तो एहसास होता है कि वो मुख्तलिफ़ हादसों और वाक़यात से पुर है, जो वहम व गुमान में भी नहीं आते। अरबी इसको क़ज़ा व कदर या किस्मत कहते हैं, आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। खुलासा यह है कि सहरा को छोड़े 17 साल हो गए, लेकिन मेरा अब तक तकदीर के बारे में वही मौक़िफ़ है, यानी पॉइंट ऑफ व्यू, जो अरबों का था। चुनाचे हादसात का सामना मैं इत्मीनान और सुकून से करता हूँ। अरबों से जो आते सीखी, वह साहब को सुकून देने में मस्कन, दुआओं और जड़ी बूटियों से भी ज़्यादा कामयाब है। सहराई अरबों को यह तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है। मिशकात नबूवत की इस तालीम का खुलासा, मिशकात कहते हैं चिराग को ना, अल्लाह नूरुस समावात में ये बात है, क्या था इन तालीमात का खुलासा, कि लोगों को हैरानी और तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाना, इनके सर से मट्टी झाड़ना, इनके बोझ और बेड़ियाँ उतार फेंकना ही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वसीका लेकर आए, इसमें सुकून और इत्मीनान का राज छुपा हुआ है। वसीका क्या होता है? अर्जी, पेशी, और नाकामी से बचाने के तरीके हैं। तकदीर का एतराफ़, हक पर अमल, मकसद तक पहुंचाना, निजात की कोशिश और जिद्दोजहद पर उभारना है। ये रबानी मिशन इसलिए आया है कि कायनात में इंसान का मुकाम मुतय्यन करे, दिल को सुकून और कल्ब को इत्मीनान दे, रंजो फिक्र ख़त्म करे, अमल और अखलाक का तज़किया कर दे, ताकि हम और आप एक मिसाली बंदा बन जाएं जो गायत वजूद से वाकिफ़ हो। यानी मुझे क्यों पैदा किया है ये बंदे को मालूम होना चाहिए। तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। देखिए आज भी देहाती शहरियों से ज़्यादा पुरसकून है, और शहरी यूरोप में रहने वालों से, और यूरोप में रहने वाले उससे भी ऊपर की दुनिया में रहने वालों से मुतमईन है। तो क्या सीखा कि ईमान आपको सुकून देता है, आपकी रहनुमाई करता है। अल्लाह हमें सच्चा ईमान दे, और ये असल में ईमान ही होता है, वरना तकदीर, मुसलमानों का भी अगर ईमान कमज़ोर हो तो कभी तकदीर के फ़ैसलों को कबूल ही ना करें। तो क्या सीखा कि किसी न किसी मज़हब को मानने वालों में ڈپریشن کی شرح کم ہوتی، کیونکہ ہر مذہب والا بالآخر تو اپنا تعلق اوپر اللہ سے جوڑتا ہے نا، کم و بیش بیچ کے سب کے لاکھوں کو اگر ہٹا دیں تو پھر ان کو اپنی زبان میں سکون تو ملتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سے بات کر کے مزہ آتا ہے، تو ان کو بھگوان سے بات کر کے، ایشور سے بات کر کے مزہ آئے گا نا، تو اندر تو وہی انسان کی روح میں چھپا ہوا ایک جذبہ محبت ہے جو اللہ نے اپنے لیے خالص کیا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ڈپریشن کی شرح کم کس میں؟ مسلمانوں میں۔ ایمان والے اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں کو آخرت کے درجوں کا باعث بناتے ہیں، پھر اسی طرح اللہ کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ ہی راہ دکھاتا بھی ہے، راہ پانے کے لیے اللہ سے مشورہ کرتے ہیں یعنی استخارہ وغیرہ۔ تو مشکل حالات میں اللہ سے مدد مانگ لینا، کوئی اگر چیز نہیں سمجھ آ رہی تو استخارہ کر لینا چاہیے۔ اور کیا سیکھا ہم نے؟ کہ مشکلات میں دلوں کو تسکین پہنچانے والے عمل کریں، دنیا کے طالب کو دنیا بھی اللہ کی مرضی سے ہی ملتی ہے اور آخرت کے طالب کو دنیا اور آخرت دونوں سے اللہ نوازتا ہے، اور اللہ کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے والے غموں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں رکھے۔ سوچیے ذرا، کوئی اپنی زندگی کا ایسا معاملہ یاد کرے کہ اگر واقعی اس کتاب سے تعلق نہ جڑا ہوتا تو ہم ٹوٹ جاتے۔ کوئی ایسا انیوژل واقعہ، کوئی ایسی بات جس کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ میں نے اللہ سے اپنے تعلق کو ایسے وقتوں میں آزما لیا۔ کیونکہ جس کے بھی دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کو الحکیم سمجھے گا، العدل سمجھے گا، العادل سمجھے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ پر اعتبار بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اگلا ٹاپک دیکھیے، منہج اعتدال۔ اعتدال کا طریقہ اختیار کیجئے، بی بیلنسڈ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ، یعنی ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ وسط اعتدال میں ہے، غلوف زیادتی اور افراط و تفریط میں نہیں۔ وسطیت ایک قابل تعریف منہج ہے جو بندے کو افراط اور تفریط سے روکتا ہے۔ وسطیت اسلام کے خصائص میں سے ہے، یہودیت و نصرانیت دونوں کے بیچ اسلام اعتدال کا راستہ ہے۔ یہودیت میں صرف علم ہے، عمل نہیں، نصرانیت میں عبادت میں غلوف ہے، علم اور دلیل نہیں، جبکہ اسلام علم اور عمل، جسم اور روح اور عقل اور نقل سب کا حامل ہے۔ درمیان میں رہنے سے زندگی میں خوشگواری آتی ہے، عبادت میں اعتدال ہو کہ جسم کو عبادت میں نہ گھلائیں، کیونکہ اس سے ہمیشگی نہیں رہے گی، یعنی آپ مشکل عبادت تھوڑی دیر تو کر لیں گے لیکن مستقل مزاج نہیں ہوں گے اور نشاط کا ختم ہو جائے گا، یعنی وہ جو ایک عبادت کے بعد خوشی اور کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی ہے پھر وہ نہیں ہوتی۔ ایسے خشک بھی نہ بنے کہ نوافل چھوڑ دیں، فرائض میں کوتاہی ہو اور ٹال مٹول کی عادت پڑ جائے، اور انفاق میں بھی اعتدال ہو، مال ضائع نہ کریں، آمدنی کو یوں ہی نہ اڑائیں کہ غریب و لاچار ہو کر رہ جائے، تنگ دلی اور بخل سے بھی کام نہ لیں کہ ملامت و محرومی حصے میں آئے، اخلاق میں بھی اعتدال ہو، نہ زیادہ سنجیدگی، نہ حد سے زیادہ نرمی، نہ ترش روی، نہ بے پناہ ہنسی اور ٹھٹھا، نہ حد سے زیادہ تنہائی اور نہ فضول قسم کا اختلاط۔ چیزوں کے لینے اور حکم لگانے میں اور دوسروں سے معاملہ کرنے میں یہی منہج اعتدال ہے۔ اس میں نہ زیادتی کی اجازت ہے جس میں اقدار کو ناپا جائے، نہ کمی کی گنجائش جس سے خیر کی جڑ مرچھا جائے۔ زیادتی اسراف ہے، کمی میں جفا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس اللہ نے اہل ایمان کو جس حق میں وہ اختلاف کر رہے تھے صحیح راستہ بتایا، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ نیکی دونوں انتہاؤں کے بیچ ہے، یعنی افراط و تفریط کے درمیان، غلوب اور کمی کے درمیان، یعنی حق اور باطلوں کے درمیان، زیادتی اور نقص، تہور اور بزدلی کے بیچ میں سعادت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے۔ دا بیسٹ وے از مڈل، وہ کہتے ہیں نا درمیانہ راستہ ہی سیکیور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کشتی میں بیٹھیں گے نا، درمیان میں بیٹھیں تو ڈر کم لگتا ہے، کیونکہ جب کشتی ادھر سے ادھر ڈوبنے لگتی ہے، ہلتی ہے، تو پہلے کناروں والے ہی پانی میں جاتے ہیں نا۔ اس طرح اگر آپ جہاز میں بیٹھے نا، یا آپ بالکل پیچھے بیٹھیں گے तो बहुत डर लगेगा, जहाज़ बहुत शेक करता है पीछे। आगे होंगे तो इंजन की आवाज़ें आती रहेंगी, मिडल की रोज अमूमन न्यूट्रल है। सबसे पीछे होंगे तो जहाज़ आड़ा लगेगा, आगे होंगे तो और भी, क्योंकि ऊपर जा रहा होता है ना, सीधा लगेगा। मिडल में होंगे तो बैलेंस होगा। फिर आप देखिए यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम को देखिए, तीनों में बुनियादी फ़र्क क्या था। यहूदियत के पास इल्म था, अमल नहीं था, टेढ़े रास्ते हुए। नसरानियत में इल्म नहीं था लेकिन सिर्फ इबादत और मोहब्बत की बातें थी। इस्लाम में इल्म भी है और अमल भी है, कुरान के साथ साथ हदीस। ये अलग बात है कि अब हम क्या करते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए उम्मत वसत की सआदत एतदाल में है, इबादत में एतदाल, इन्फाक में एतदाल, अखलाक में एतदाल, इल्म और हुक्म में भी एतदाल है। और जितना ज़्यादा एतदाल में होंगे, अब देखिए दरमियाना चलें तब ज़्यादा देर चलेंगे, तेज़ चलेंगे तो थक जाएंगे, बहुत सुस्त चलेंगे तो भी थक जाएंगे। खाएंगे तेज़ी तेज़ी में खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे पेट फूल जाएगा और आपको सांस चढ़ेगा, और थोड़ा थोड़ा करके खाते ही जा रहे हैं, और वो पहला लगता हज़म हो जाता है दूसरा लुकमा जाने तक। तो बैलेंस रवैया, बीच का रवैया, अल्लाह ताला हमें इसी पे बरकत दे और इसके ऊपर अपने आप को जमाने वाला बना दे।